बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबील मीडिया रिसर्च टीम कोरोना वायरस के सिलसिले में स्पेशल एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। कोरोना वायरस के सिलसिले में किए गए सवाल के जवाब में आयतुल्ला सिस्तानी ने 3 नसीहतें फरमाई हैं। दुआ करें और गिड़गिड़ाकर अल्लाह की रहमत तलब करें ताकि ये मुसीबत हर एक इंसान से दूर हो सके। उम्मीद है कि मोमिनीन की दुआएं अल्लाह ताला कबूल करेगा। एक्सपर्ट्स की जानिब से जो भी हेल्थ गाइडलाइंस दी गई हैं, इन पर ज्यादा से ज्यादा और संजीदगी से अमल किया जाए। एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करें ताकि इस वायरस से दूसरे भी महफूज रहें, और अगर मुमकिन हो तो जो लोग इस बीमारी में मुबतला हैं, उनकी मदद करें ताकि वो जल्द शफायाब हो सकें। कोरोना वायरस के हवाले से आयतुल्ला खामेनाई ने ईरान की आवाम से दरख्वास्त करते हुए फरमाया, मोमिनीन ऑफिशियल्स और एक्सपर्ट्स के बताए हुए हेल्थ गाइडलाइन के उसूल और दस्तूर की खिलाफवर्जी न करें। एहतियाती इकदाम, हाथ, मुंह और घर की सफाई का ख्याल रखें। इन्फेक्शन और गंदगी से बचने के सिलसिले में एक्सपर्ट्स की जरूरी हिदायत पर संजीदगी से अमल करें। यकीनन हर वो चीज जो मुआशरे की सलामती में मददगार हो और इस बीमारी को फैलने से रोके, वो एक नेक अमल है। इसी के मुकाबले में हर वो चीज जो इस बीमारी के फैलने का सबब हो, वो एक बुराई शुमार होगी। इसी तरह आयतुल्ला मकारिम शेराजी फरमाते हैं, जान बचाना इस्लाम की निगाह में वाजिब है और हर शख्स की जिम्मेदारी है कि वो हेल्थ के उसूल की रियायत करते हुए अपनी जान की हिफाजत करे। लिहाजा एक्सपर्ट्स अगर इस बारे में जरूरी बातें बयान करते हैं तो इनकी बातों पर भरोसा करें और इनकी बताई गई हिदायत पर अमल करें। आए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हेल्थ गाइडलाइन को समझने की कोशिश करते हैं। कोरोना वायरस वायरसेस की ऐसी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं जिनको मर्स काफ भी बोला जाता है, जो कि मामूली नजला जुकाम से लेकर शदीद किस्म की सांस की मुश्किलात इजाद कर सकते हैं। ये वायरस नवंबर 2019 में चाइना के शहर वुहान से शुरू हुआ और इस वक्त दुनिया के 118 ममालिक में फैल चुका है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना की इस बीमारी को पेंडेमिक करार दिया है, यानी बहुत ज्यादा फैलने वाली। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इस बीमारी के तकरीबन 1,70,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इसकी वजह से 6,525 अमवात हो चुकी हैं। दूसरी तरफ 77,778 मरीज शिफायाब हो चुके हैं। इस बीमारी में सबसे खतरनाक बात यह है कि ये बीमारी इन्फेक्शियस है, यानी वायरस लोगों में एक दूसरे से बहुत जल्दी फैलता है। ईरान में इस इशू को इतना सीरियस लिया गया है कि उलमा ने नमाज जुमा और हत्ता तमाम जमात की नमाजों को ऑफिशियली रोक दिया है। ये बीमारी इन चीजों से फैल सकती है। बीमार इंसान की खांसी या छींकने के बाद इसके मुंह से निकलने वाले जर्रात के जरिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या वर्क प्लेसेस और हर वो सरफेस जो आलूदा हो उसे छूने की वजह से, बीमार अफराद से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट यानी हाथ मिलाना या गले लगाने की सूरत में। कोरोना वायरस की सबसे अहम निशानियों में से कुछ ये हैं: बुखार, सूखी खांसी, गले में दर्द, सांस लेने में दुश्वारी, उल्टी और मोशन। वो अफराद जिनके लिए कोरोना वायरस सबसे ज्यादा खतरनाक है वो ये लोग हैं। वो लोग जिनका इम्यूनिटी लेवल कम है, इन्फेंट यानी बहुत छोटे बच्चे, हामिला यानी प्रेग्नेंट खवातीन, बूढ़े और बुजुर्ग अफराद। नोट: सबसे ज्यादा अमवात बूढ़े लोग और उन अफराद की हुई है जिनको पहले से कोई खतरनाक बीमारी थी। अगर इंसान का मुदाफियती निजाम यानी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो तो इस सूरत में ये वायरस गुर्दे और सांस की तकलीफ और हत्ता मौत का सबब भी बन सकता है। बीमार फर्द की सिचुएशन के हिसाब से डॉक्टर की तशखीस के मुताबिक बुखार की दवाएं, ड्रिप, ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक्स और दूसरी चीजों से इसका इलाज किया जा रहा है। इस बीमारी की वैक्सीन तैयार करने के लिए रिसर्च जारी है। अगर हम अपने आप को इस बीमारी से बचाना चाहते हैं तो इन बातों का जरूर ख्याल रखें। पाबंदी से अपने हाथ और मुंह को साबुन से धोएं, खासकर छींकने, खांसी और टॉयलेट जाने के बाद। खांसी या छींकने के लिए टिश्यू का इस्तेमाल करें और उसको जरूर डस्टबिन में फेंक दें। ऐसे डस्टबिन का इस्तेमाल करें जो फौरन बंद हो सके। जहां तक मुमकिन हो सके अपनी आंखों, नाक और मुंह को हाथ ना लगाएं। अगर बीमार हैं या किसी बीमार से मिलने गए हैं या अगर भीड़ या पब्लिक प्लेस में जाना हो तो जरूर मास्क लगाएं। कोशिश करें सही डाइट, मुनासिब एक्सरसाइज और मुकम्मल नींद लें। फलों और सब्जियों को इस्तेमाल से पहले जरूर अच्छी तरह धो लें। जहां तक मुमकिन है बीमार अफराद से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से बचें और इनकी चीजों को हाथ न लगाएं। खाना खुसूसन गोश्त को अच्छी तरह पका लें और दूध को भी अच्छी तरह उबाल कर इस्तेमाल करें। नोट: कोरोना का मर्ज अगर शनाख्त हो जाए तो इनिशियल स्टेजेस में इसका इलाज मुमकिन है। आपसे दरख्वास्त है कि इस बीमारी की निशानियों की सूरत में फौरन डॉक्टर से राब्ता करें और हमेशा याद रखें, एहतियात इलाज से बेहतर है।
मौलाना साहब, मेरा एक सवाल है, जो कुरान में आजकल बाल निकल रहा है उसका क्या करें?
इस्लाम दीन अक्ल है और खुराफात और अंधी तकलीद का दुश्मन। कुरान और अहले बैत ने जा बजा हमें गौर व फिक्र और अक्ल समझ से काम लेने की दावत दी है। कुरान में बाल का निकलना और कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए इसे मुफीद बताना, ये भी एक खुराफाती अमल है। आयतुल्ला खामेनाई खुराफात से मुकाबले के बारे में फरमाते हैं, बास खुराफाती काम जिसका दुश्मन गलत फायदा उठा सकता है, इनसे दूरी करना जरूरी है। और आयतुल्ला सिस्तानी मुबल्लिगीन को नसीहत करते हुए फरमाते हैं, मजलिसों में ख्वाबों और ख्याली किस्सों को बयान करने से परहेज करें, क्योंकि ये चीज मिंबर के शान और एतबार के खिलाफ है और इससे ये पैगाम जाएगा کہ ممبر بے بنیاد باتوں کو پھیلانے کا وسیلہ ہے۔ تو اب اگر کوئی خواب کے ذریعے کرونا جیسی بیماری کے علاج کی بات کر رہا ہے تو ایسے خواب کی شرعی اور عقلی اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایران وہ ملک ہے جہاں چین اور اٹلی کے بعد سب سے زیادہ افراد وائرس سے متاثر ہیں۔ یاد رہے کہ ایران میں اسلامی حکومت ہے اور ولایت فقیہ کا نظام قائم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب یہاں علماء اور مجتہدین سے اس وائرس کے بارے میں سوال ہوا تو انہوں نے سب سے پہلے ڈاکٹرز کی بتائی ہوئی ہیلتھ گائیڈ لائن پر عمل کرنے کی نصیحت کی، اور ان امور کے ساتھ ساتھ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا اور توسل کی طرف توجہ دلائی۔ وبا سے بچنے کے لیے مراجع کرام کی معنوی نصیحتیں۔ آیت اللہ خامنائی اپنے بیان میں فرماتے ہیں کہ مومنین اللہ سے توسل کریں اور تمام توجہات کو اللہ کی جانب موڑ دیں اور الہی امداد کی درخواست کریں، یہ ایک ضروری اور لازمی عمل ہے۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ مختلف اور طرح طرح کے حادثات کے موقع پر اللہ کی بارگاہ میں دست دعا بلند کریں اور اس سے مدد مانگیں۔ اگر مشخص اور معین نصیحت کی بات ہے تو میری نصیحت یہ ہے کہ صحیفہ سجادیہ کی ساتویں دعا جو مفاتیح الجنان میں بھی موجود ہے اس کی قرآت کریں اور اللہ سے ان خوبصورت الفاظ کے ذریعے مدد طلب کریں۔ اس دعا کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اسی حوالے سے آیت اللہ مکارم شیرازی فرماتے ہیں، بہتر ہے کہ ہر گھر میں زیارت عاشورہ اور حدیث کسا کی تلاوت کی جائے، کیونکہ ان دعاؤں کے اثار بہت زیادہ ہیں۔
مولانا صاحب، سوال یہ ہے کہ اگر ڈاکٹرز کی نصیحت کے مطابق نماز جماعت، دعائیں اور مذہبی پروگرامز میں جمع ہونے کی وجہ سے وائرس کے پھیلنے کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟
آیت اللہ سیستانی سلسلے میں فرماتے ہیں، اس قسم کے اجتماع سے روکے جانے کا مقصد کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنا ہے، لہٰذا اس کی پابندی کرنا اور اسے سنجیدگی سے لینا واجب ہے۔
مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے، اگر کوئی شخص ڈاکٹرز کے بتائے ہوئے ہیلتھ گائیڈ لائن کی رعایت نہ کرے تو کیا یہ گناہ میں شمار ہوگا؟ اور اگر کوئی شخص کسی دوسرے کو اس بیماری میں مبتلا کر دے تو ایسی صورت میں وہ اس کے میڈیکل کے اخراجات کا ذمہ دار ہے یا نہیں؟
اگر انسان کو اس وائرس سے مریض ہونے کا خوف ہو اور انسان اس بات کا احتمال دے کہ اگر وہ اس وائرس میں گرفتار ہو گیا تو وہ مر جائے گا یا اسے سخت نقصان پہنچے گا، تو ایسی صورت میں ہیلتھ گائیڈ لائن کی رعایت واجب ہے۔ اور اگر رعایت نہ کرے اور خدا نہ خاصا وہ اس مرض میں مبتلا ہو جائے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں شرعی طور پر اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا، یعنی وہ گناہگار ہے۔ اگر اے شخص جو کرونا وائرس میں مبتلا ہے اور ہیلتھ گائیڈ لائنز کو نظر انداز کرتے ہوئے بی شخص سے ملاقات کرے اور بی کو اے کی بیماری کی کوئی بھی اطلاع نہ ہو اور بی بھی اے کی بے احتیاطی کی وجہ سے بیمار ہو جائے، تو ایسی صورت میں اے شرعی طور پر ذمہ دار ہے کہ بی کے علاج کے تمام اخراجات کو برداشت کرے، اور اگر اس بیماری سے بی کی موت ہو جائے تو اے پر اس کی دیت بھی واجب ہوگی۔ آخر میں مومنین سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہیلتھ گائیڈ لائنز کو سیریس لیں اور ہمیشہ اپنی زندگی میں صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ ساتھ ہی ساتھ خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ وہ اس منحوس وائرس کو جلد سے جلد بطفیل محمد و آل محمد ختم فرمائے۔